Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Shuddhatmane Namah. Samyak Darshana Charana Guna Payaku Karma Kipai Keval Jnana Upaya Prabhu Bhaye Bhajo Shivarai Jinavani Ke Jnanate Ota Tattva Shraddha Charan Dhari Keval Lahe Paave Pad Nirva.
Labdhisar Granth Ke Aadhar Se यहाँ प्रथमोपशम समय से पूर्व होने वाली जो पांच लब्धि है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पृष्ठ संख्या 60 है हिंदी में, गुजराती में 57 होगी। देखो यहाँ हम अभी प्रथमोपशम समय तो की पात्रता संबंधी अपना प्रकरण शुरू हुआ है, ये हमने पढ़ा है, फिर भी हम उसको फिर देख लेते हैं। अभी आए ना पांच लब्धि के नाम बताए हैं, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। ये प्रथमोपशम सम्यक तो किसे होता है उस संबंधी वो 57 पृष्ठ पर आपके यहाँ, यहाँ जो बीच में इन्वर्टेड में लिया ना, तो चारों गति वाला हम देख लेते हैं फिर दोबारा। किस जीव को हो सकता है तो चारों गति वालों के हो सकता है, परंतु वो भव्य होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि आवश्यक कंडीशन बताई, क्यों? क्योंकि यहाँ प्रथमोपशम सम्यक्त की बात है। क्षयोपशम सम्यक्त तो उपशम समय दर्शन वाले को क्षयोपशम हो सकता है, या मिथ्या दृष्टि जो सादी मिथ्या दृष्टि वो भी क्षयोपशम प्राप्त कर सकता है, परंतु यहाँ प्रथमोपशम की बात चल रही है तो वो मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। आगे की कंडीशन है संगी पंचेंद्रिय को ही होगा, एकेंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रियों को उस पर्याय में सम्यक्त प्राप्त नहीं होगा, पर्याप्त होने की आवश्यकता है। अपर्याप्त जीवों की तो लाइफ स्पैन छोटी होती है, पर्याप्त जीव भी जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक उन्हें सम्यक्त नया जो सम्यक्त प्राप्त करना है वो वहां नहीं हुआ। पूर्व भव से सम्यक्त के साथ जो जन्मे हैं उनके भी पर्याप्त पूरी होने तक जो अपर्याप्त दशा पाई जाती है उसमें तो सम्यक तो बना रहेगा, यहाँ नया सम्यक तो कौन प्राप्त कर सकता है उसकी बात चल रही है। मनुष्य और तिर्यंचों के लिए एक कंडीशन आवश्यक बताई कि वे गर्भज होना चाहिए। तिर्यंचों में सम्मूर्छन जीव जो होते हैं, संगी पंचेंद्रिय भी सम्मूर्छन कौन से, वो लंबी आयु वाले भी हो सकते हैं। मनुष्य में सम्मूर्छन हमने देखे कि वो श्वास के 18वें भाग इतनी छोटी आयु होती है, परंतु संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन जीव करोड़ पूर्व की आयु वाले भी हो सकते हैं, परंतु उन जीवों में वेदक यानी क्षयोपशम सम्यक्त तो हो सकता है, प्रथमोपशम सम्यक्त नहीं हो सकता, इसलिए यहां गर्भज वाली कंडीशन बताइए। ये तो देव और नार की तो सब उपपाद वाले ही होते, उसमें ये कंडीशन लागू नहीं है। मंद कषाय रूप विशुद्धता का धारी, यानी जो मंद कषाय वाला है, धर्मानुराग रूप जिसकी प्रवृत्ति है, ऐसा यहाँ जीव लेना है। जागृत अवस्था में ही समय दर्शन होगा, निद्रा में नहीं। साकार ज्ञानोपयोगी जीव जब सम्यक तो प्राप्त होता है, आत्मा की अनुभूति होती है, तो ज्ञानोपयोग चल रहा होता है। बाद में उपशम सम्यक्त प्राप्त होने पर, वो उपशम सम्यक्त का काल अंतर्मूर्त है, तो पश्चात वो दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग पलटता है, परंतु जब फर्स्ट मोमेंट पहला समय जो है सम्यक्त प्राप्ति का, उस समय ज्ञानोपयोग की दशा में ही उसको सम्यक्त की प्राप्ति होती है। और जब सम्यक्त प्राप्त होता है उसके पहले पांच लब्धि होती है, अभी हमने जो नाम सुने हैं, तो जो पांचवी जो करण लब्धि है उसमें तीन प्रकार है, प्रकार ने तीन स्टेजेस है। पहले में पहली कौन सा है, यहाँ तो हुआ नहीं अपना अधप्रवृत्तकरण, फिर अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, उसके पश्चात सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। ये तो हमने सुबह इसको देखा था। हमने जो देखा था कि जिसको सम्यक्त्व प्राप्त होता है तो वहां भी सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन ये पर्याय है, वहां भी पांचों समवाय लगेंगे। पांच समवाय के नाम याद है ना, स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनहार और निमित्त, सब कुछ उसमें वहां यथा योग्य लगेगी। यानी कोई जीव कहता है पुरुषार्थ के बिना ही हमको हो जाएगा, क्योंकि हमारे काल आया है, काल पक गया है इसलिए हमको हो जाएगा, तो बिना पुरुषार्थ के नहीं होगा, पांचों ही समवाय वहां हो गए ही। यहां तक की बात अपनी सुबह हुई। अब पेज नंबर 61 है मेरे में, आप में वो 58 होगा। हाँ देखो, तुम कहोगी मिला ना, कर्म को उपशामने का पुरुषार्थ करके तो सम्यक्त होगा ना, प्रश्न क्या है। अभी हम प्रथम उपशम सम्यक्त की बात कर रहे हैं। उपशम सम्यक्त के काल में कर्मों की कैसी अवस्था होती है, उपशम की अवस्था होती है। कौन से कर्मों का उपशम होगा अभी यहाँ पर, दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी। तो प्रश्न क्या है, जीव पुरुषार्थ करके सम्यक्त्व प्राप्त करता है तो कर्म का उपशम करने का पुरुषार्थ जीव करेगा कि नहीं करेगा। डॉक्टर आप क्या कहते हैं,
वो कभी नहीं भी करेगा।
हाँ, नहीं भी करेगा और कभी करेगा भी। हाँ, आप क्या कहते हैं रमेश भाई,
कर्मों से है नहीं रिलेशन,
नहीं।
हाँ आप कहते हैं नहीं है। हर्षद भाई आप क्या कहेंगे। हाँ देखो देखो, हम पहले डिसाइड करते हैं। पहले हमने क्या देखा था, पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ करता है ने क्या करता है, सम्यक्ति की पर्याय उत्पन्न करता है। किसी भी जीव का पुरुषार्थ किस में चलता है, अपने में ही चलता है। क्यों, पुरुषार्थ क्या है, पर्याय है। किस गुण की है, वीर्य गुण की है। तो हम पर्याय कितनी होती है, हमने वो द्रव्य गुण पर्याय वाला चार्ट देखा था। तो पर्याय कहाँ होती है, अपने द्रव्य में होती है। कितनी बड़ी होती है, जितना बड़ा द्रव्य उतनी बड़ी पर्याय, उसी के क्षेत्र में होती है। तो उस क्षेत्र छोड़कर बाहर थोड़ी होती होगी कि नहीं होती होगी। जीव की पर्याय शरीर में होती होगी कि जीव में होती है, जीव में। कर्म में थोड़ी होती होगी, वो भी नहीं होती है। तो कर्म की अवस्था कर्म में, कर्म के कारण। जीव की अवस्था जीव के अपने में, जीव के अपने कारण। तो जीव का पुरुषार्थ किस में चलेगा, कर्म में के जीव में। ख्याल आता है कुछ, यह हम लौकिक में सुबह बहुत चर्चा चली थी। लौकिक में हम जिसको पुरुषार्थ कहते हैं उसकी बात यहाँ नहीं है। प्रत्येक द्रव्य की अपनी पर्याय अपने पुरुषार्थ से ही होती है। अब उसको उल्टा पुरुषार्थ कहो या सीधा कहो, अभी जो कोई नरक में जाता है क्यों जाता है, पुरुषार्थ करके जाता है कि नहीं। हाँ, उस जाति का पुरुषार्थ करता है,
कर्म ले जाता है,
कर्म ले जाता है क्या, वो जीव को खींच कर ले जाता है कि नहीं। हमने तो सुना था गति नाम कर्म जीव को नरक गति में, जैसे नरक गति नाम कर्म जीव को नरक में ले जाता है। ये कथन उपचार का है, व्यवहार कथन है। जहाँ दो द्रव्यों का मिलकर कथन होता है, इसने ये किया, कर्म ने जीव को ये फल दिया, ये इसको कहेंगे क्या कहेंगे, उपचार कथन, व्यवहार कथन। और उस द्रव्य की वह पर्याय हुई अपने से, ये है निश्चय कथन, फैक्ट। अब यहाँ क्या कहते हैं, इसीलिए प्रश्न क्या पूछा है बच्चों ने, क्या पूछा है, कर्म को उपशामने का पुरुषार्थ करके तो सम्यक्त तो होगा ना। जिस समय सम्यक्त तो होता है उस समय कर्म का उपशम तो होता ही है, क्योंकि हम यहाँ उपशम सम्यक्त की बात करें। तो प्रश्न है, जीव ने वो पुरुषार्थ किया कि नहीं किया, कौन सा पुरुषार्थ किया, कर्म को उपशामने का। तो हम उसका निर्णय देखते हैं, अभी क्या कहते हैं। देखो देखो बेटी, जीव का पुरुषार्थ जीव में अपने स्वयं में होता है। हम कहेंगे कि जीव ने कर्म का उपशम करके सम्यक्त की प्राप्ति की, एक कथन हुआ, दो द्रव्यों का मिलकर हुआ ना, जीव ने कर्म में कुछ किया, तो जब हम शास्त्र में पढ़ेंगे तो क्या समझना चाहिए, यह व्यवहार का कथन है, दो द्रव्यों का मिलकर कथन है, शास्त्र में ऐसे कथन आएंगे, जगह जगह पर आएंगे, परंतु हमें अभी वो पढ़ना कैसे शास्त्र, ये पद्धति होती है, तो दो द्रव्यों का कथन आया ना, तो अभी हमें क्या समझना, ये व्यवहार कथन है, उपचार कथन है, तो किसी भी द्रव्य की कोई भी पर्याय अन्य द्रव्य ला नहीं सकता, पलटा नहीं सकता, नष्ट भी नहीं कर सकता, ये मुख्य में मूल ये सिद्धांत हमको अंगीकार करना है कि उपादान से ही कार्य होता है, निमित्त वहां होता है परंतु वो कार्य में कुछ नहीं करता। प्रथमोपशम सम्यक तो होने के पहले तथा पश्चात कर्मों में तथा नवीन होने वाले कर्मबंध में, क्या कहते हैं, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं प्रथमोपशम सम्यक का प्रोसेस जो चलेगा, कर्म में क्या क्या होता है, यानी जो सत्ता में पड़े कर्म है उसमें बहुत सारे अवस्थांतर होंगे, सो मेनी चेंजेस, और जो नया कर्मबंध होगा उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन अभी होने वाले हैं, ये जो कुछ होगा स्थित्यंतर यानी स्थिति के अंतर, अन्य स्थिति बनेगी, उसी को क्या कहा, अवस्थांतर। अब आप देशांतर करके जाएंगे ना, यूरोप जाने वाले देशांतर के यानी अन्य देश को जाना, यहाँ क्या है अवस्थांतर यानी अन्य अवस्था को प्राप्त हो गया, उसकी अवस्था पलटेगी। कर्म की ये सब अवस्थाएं कर्म में उनकी स्वयं की योग्यता से होती है। जीव केवल तत्व विचार और तत्व निर्णय करता है, यही पुरुषार्थ है। जीव कौन सा पुरुषार्थ करके समय तो प्राप्त करेगा भाई, तत्व विचार और तत्व निर्णय, इसी से सम्यक तो होगा। क्या केवल विचार से ही होगा, बस तत्व को विचार में लिया, उस पर विचार करते गए और बस निर्णय किया और सम्यक तो हुआ, हाँ इतने मात्र से होता है सम्यक तो इतने मात्र से ही होता है। फिर आगे क्या प्रोसेस, तो जब एक बार सम्यक तो हुआ तो आत्मा में ही एकाग्र रहने से ये आगे के भी सारी वो तो वितरागता बढ़ती चली जाती है। तो व्रत आदि की बात कहाँ रही, हमने तो वो सुना है व्रत आदि होते हैं, मुनि व्रत धारण करते, वो सारा ही जैसे जिस भूमिका में है वैसे वैसे बाह्य व्रत आदि भी हो जाते हैं। मूल में मूल सम्यक्त्व से ही, सम्यक्त्व प्राप्ति से ही धर्म की शुरुआत होती है, और वो कैसे प्राप्त होता है, तत्व विचार करने से होता है। तत्व विचार करते हुए कर्म के उपशमादि स्वयं हो जाते हैं, बस जीव तत्व विचार में लीन है, वो तो उस पर सोच रहा है, बस इतने मात्र से ही कर्म में ये उपशम वगैरह स्वयं हो जाते हैं। जीव को कर्म में कुछ करना नहीं पड़ता, वह कुछ कर ही नहीं सकता, यानी वो कर ही नहीं सकता, ऐसे नहीं कि अभी कर सकता है परंतु हमें कुछ नहीं करना, अभी चुपचाप बैठ जाओ कुछ नहीं करना, ऐसी बात नहीं है, वो कर ही नहीं सकता। अभी हमने बाकी तो बात देखी थी कि जो जो कुछ हमने देखा ना, ये जो कोई कंडीशंस है उसकी हमने बहुत चर्चा की है, अब हम आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे देना वो 64 पेज चिपके हुए पेज है, हाँ 64 पेज निकालना, आप में 61 होगा, वो भी हुआ था हमने साकार निराकार की हमने बात देखी थी ना, हाँ 65 पेज है, उसमें 62 होगी, जहाँ ज्ञानोपयोग की बात है उसके पश्चात वाला पैराग्राफ, मनोयोग वचन योग मिल गया, हाँ। मनोयोग वचन योग या काय योग में से किसी भी योग वाले जीव को प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति होती है। यह अपना योग का प्रकरण नहीं है, ये जो योग होते हैं ना मनोयोग वचन योग और काय योग, बिल्कुल अत्यंत छोटे अंतर्मूर्त में यह पलटना चलता रहता है। हमें पता नहीं चलता अभी मनोयोग चल रहा है कि वचन योग चल रहा है कि काय योग। तो किसी भी योग में ये प्राप्त होता है, इतना ही जस्ट इन्फॉर्मेशन है, उसकी ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है अभी। अब कहते हैं उपरोक्त पांच लब्धि पूर्वक ही प्रथमोपशम सम्यक तो होगा। ये जो हमने आवश्यक कंडीशन देखी थी उसकी चर्चा यहाँ पूर्ण होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोई पूछते है कि हमें कितनी लब्धि प्राप्त है, पांच लब्धि के बाद सम्यक तो होता है ना, तो नेचुरली प्रश्न क्या होता है, हमें कितनी अभी लब्धि है, कितने लब्धि तक हम आए हैं और कितनी लब्धि प्राप्त करना बाकी रह गई है। हम अनेक सालों से शास्त्र स्वाध्याय करते आए हैं, हमें चार लब्धि तो है ना, और ऐसे सोचते भी है, क्योंकि ये जो प्रश्न यहाँ बेटियों के मुंह में डाला है तो समाज में ऐसी मान्यताएं देखने में आती है, तो इसलिए भी ये जो प्रश्न लेके उसका भी हम चर्चा करेंगे उस पर, क्योंकि हमने देखा है चार लब्धि तक भी जीव अनंत बार आ चुका है और उसको सम्यक तो नहीं हुआ है। तो कहते यहाँ तो इतनी तक तो हम आए कि नहीं आए, जीव चार लब्धि में ही क्यों संतुष्ट हो रहा है। अभव्य जीव को भी अनंत बार प्रायोग्य लब्धि तक चार लब्धि प्राप्त हो सकती है। यदि भव्य जीव भी प्रायोग्य लब्धि तक आकर करण लब्धि में नहीं जाएंगे, तो करण लब्धि में जाना है इसका अर्थ क्या है, आत्मसन्मुख पुरुषार्थ नहीं होगा। तो इन्हें बस तत्व के नाम सीखे, रट लिए, बस चर्चा की, परंतु आत्मा में जो उपयोग लगाना है, एकाग्र होना है, वो कार्य रह गया, तो उन्हें भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की महिमा, ये और कौन सा आत्मा है, हा? देखो जब हम द्रव्य कहते हैं तो गुण पर्यायवान द्रव्य, हमने देखा था गुणों का समूह द्रव्य है और अनादि अनंत पर्यायों का समूह वो द्रव्य है। अभी हमें अपने को ही किस रूप में स्वीकार करना है कि मैं हूं, तो अभी तक हम कितना मान रहे थे अपने को, पर्याय जितना है। पहले में पहले शरीर मैं हूं, मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो स्त्री हूं, मैं तो इतने 100 साल वाला आयु वाला हूं, ऐसा जीव मानता है। उसको पता चला कि शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूं, तो मैं जीव हूं परंतु मैं रागी हूं, द्वेषी हूं, अरे मैं बहुत पापी हूं। ये समय दर्शन तो बहुत हाई लेवल की बात मत करो, हमारी लेवल की बातें करो। तो अपने को कितना माना, पर्याय जितना। फिर क्या कहता है, ए मेरी बुद्धि बहुत कम है, ये बड़ी बड़ी बातें हमारे ख्याल में नहीं आती। तो अपने को कितना माना, पर्याय जितना माना। तो मैं कौन हूं, तो मैं जीव हूं ना, तो कायम रहने वाला जो स्वभाव है वह मैं हूं, तो वो कैसा है, सिद्धों जैसा। तो ये इसको कहते त्रिकाली ध्रुव, ध्रुव यानी कायम रहने वाला भगवान आत्मा, उसकी महिमा और महानता। जब हम अपने को पर्याय जितना मानते हैं तो हीन दीन मानते हैं, परंतु जब हम कहते कि भगवान आत्मा यानी मैं स्वयं कैसा हूं, सिद्ध भगवान जैसा, तो अपनी महानता भासित होती। जब तक ऐसी महानता नहीं भासित होगी तब तक इन तत्वों को सुनकर, हमने तो 6 द्रव्य 7 तत्व उनका स्वरूप सब सुन लिया, सुनकर याद कर और धारणा में रखकर भी कोई फायदा नहीं है। अब कहें क्या कहते हैं, ये स्वाध्याय करने से कुछ फायदा नहीं है तो हम छोड़ देंगे, वो बात नहीं है। पहले में पहले ये हम सुनेंगे, याद करेंगे, फिर उस पर बार बार तत्व विचार करेंगे और इस समय तो की प्राप्ति होगी। बस सुना और याद किया उससे कुछ नहीं होने वाला, ये बात कहना चाहते हैं। उस रूप परिणमन होगा तो ही कार्य होगा। हमने देखा था ना, सुनना किसे कहते हैं, कल बात आई थी ना, बच्चे को बोला पानी लेके आ और उसने सुनकर पानी लाया तो कहेंगे हाँ मेरा राजा बेटा कितना अच्छा है, मेरा सब कुछ सुनता है। और वो बच्चे ने कान से तो सुना, उस रूप परिणमन नहीं किया तो कितना गुस्सा आता है। पर हमारे भगवान वीतरागी है ना, इतना उपदेश देते और हम नहीं सुनते, उनको कितना गुस्सा आना चाहिए। अरे वो क्या कहते, वो तो वीतरागी है।
इसलिए नहीं सुनते।
देखो देखो भगवान तो हमें इतना सारा उपदेश देकर, वो तो सिद्धालय में विराजमान है, हम भगवान के पास क्यों जाते हैं? वहां भी जो मूर्ति उनकी विराजमान है ना, जिसको हमने कल देखा था स्थापना निक्षेप, तो वो हमें मूक उपदेश दे रही है। भगवान के पास जाते तो भगवान आपको आशीर्वादात्मक हाथ या ऐसा हाथ रखे ऐसा करते ना कि नहीं करते, आपका भला हो कहते कि नहीं कहते? नहीं कहते। अच्छा तो कहाँ है उनका लक्ष्य? वो तो अपने में लीन है, तो हमें बताते हैं मैं अपने में, मैं मेरे और अपने ओर देख रहा हूँ, तू भी अपनी ओर देख। पर हमें फुर्सत कहाँ है उनकी सुनने को? हम मंदिर में जाकर क्या करते हैं? भगवान को सुनाते हैं, नहीं समझे? क्या सुनाते हैं? अरे हम उनकी जय बोलते हैं, हम उनकी स्तुति करते हैं, हम पूजा करते हैं, तो हम एक घंटा रोज बहुत मनोभाव से उनकी पूजा करते हैं। और भगवान क्या कहते? अरे इतनी कहाँ फुर्सत है, हमने भगवान को सुना दिया और हम लौट के आए। आपको मालूम है द्विंद्रिय जीव, अभी आज भाषा वर्गणा की बातें आई थी ना, द्विंद्रियों को भाषा है, तीन्द्रियों को है, चतुरिंद्रियों को है, भाषा तो है, कर्णेन्द्रिय है कि उनके? कर्णेन्द्रिय कौन से इंद्रिय वाले को होता है? पंचेन्द्रियों को होता है। तो द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय को भाषा तो है, बोलते तो है, सुनते नहीं है। हम भी क्या करते हैं? भगवान को सुनाते तो है और भगवान की वाणी सुनते नहीं है, तो हमारी भी वैसी अवस्था होगी क्यों है? तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये जो पांच लब्धि है ना, एक एक लब्धि का काल अंतर्मूर्त है। जब अंतर्मूर्त कहते हैं तो 48 मिनट वाला मत समझना, यथा योग्य। सबका मिलकर भी काल अंतर्मूर्त है, पांचों लब्धि मिलकर भी अंतर्मूर्त है, और इसके बाद प्रथमोपशम सम्यक तो होगा, उसका काल भी अंतर्मूर्त है। हाँ देखो देखो, ये अंतर्मूर्त किसको कहना? अंतर यानी कम, किससे कम? मूर्त से कम। मूर्त किसको कहते हैं? दो घड़ी को मूर्त कहते हैं। एक घड़ी इज इक्वल टू 24 मिनट और दो घड़ी कितनी हुई? 48 मिनट। उसमें कम, तो उसमें एक समय भी कम हो तो हम कहेंगे अंतर्मूर्त, वो बड़े से बड़ा हुआ। 48 मिनट में एक समय कम, उसको भी अंतर्मूर्त कहेंगे। 47 मिनट हुआ, उसको भी अंतर्मूर्त कहेंगे। 40 मिनट को भी अंतर्मूर्त कहेंगे। 10 मिनट को भी अंतर्मूर्त कहेंगे। 1 मिनट को भी अंतर्मूर्त कहेंगे। 1 सेकंड को भी अंतर्मूर्त कहेंगे। सेकंड का कुछ पार्ट ऑफ अ सेकंड, उसको भी अंतर्मूर्त कहेंगे। तो ये अंतर्मूर्त के बहुत सारे भेद है अलग अलग। तो मिनिमम अंतर्मूर्त कितना होता है? एक आवली प्लस एक समय, यानी आवली के ऊपर और 48 मिनट के नीचे, जितने ये समयों के भेद है वे सब अंतर्मूर्त कहलाएंगे। क्या कहा? आवली से ऊपर यानी आवली प्लस एक समय से लेकर 48 मिनट में एक समय कम वहां तक, अंतर्मूर्त के एक एक समय से बढ़ते हुए सब भेद हो गए। उसमें से कौन सा अंतर्मूर्त? तो जितना केवल ज्ञानी ने देखा है उतना, क्योंकि उसके डिटेल में जाने की हमें अभी जरूरत नहीं है, वो अंतर्मूर्त है इतना समझना। पर जरूरी ये मिनटों वाला होगा ना, ये छोटा छोटा काल होता है। सब मिलकर भी अंतर्मूर्त होता है, यानी पांच लब्धि भी होगी, सम्यक तो भी प्राप्त होगा, सब मिलकर काल कितना है? एक अंतर्मूर्त। हमने देखा था ना, ये एक आवली में समय कितने? असंख्यात। कितने असंख्यात? तो उसका पर्टिकुलर नाम है जघन्य युक्ता असंख्यात। एक आवली में ऐसी आवली कितनी बड़ी होती है? तो एक सेकंड में सैकड़ों आवली होती है, सैकड़ों ने हजारों आवली होती है, तो इतना वो काल छोटा है, आवली काल भी इतना छोटा है। अब हम देखते आगे, तत्व जिज्ञासा, यानी आत्मा में तत्व को जानने की, आत्मा क्या होती है, अरे मैं जीव हूं, मेरा क्या स्वरूप है, कोई भी ऐसी जो जिज्ञासा अंदर है, तो तत्व जिज्ञासा यानी आत्मा को जानने की तीव्र रुचि उत्पन्न होती है, तब विशुद्धि भी वृद्धिंगत हो जाती है। विशुद्धि ने यहाँ शुभ परिणाम समझना, विशुद्धि के अलग अलग अर्थ आते हैं, तो कहीं कहीं वीतरागता को भी विशुद्धि कहते हैं। अब यहाँ शुभ भाव को भी विशुद्धि कहा है। उस समय देशना सुनकर, यानी किसी को इस भव में देशना मिलेगी, देशना का अर्थ क्या लिया? उपदेश। कोई भी उपदेश नहीं चलेगा, ज्ञानी का उपदेश। और जैसा जिनेन्द्र भगवान ने बताया है वैसा उपदेश सुनकर ज्ञानी जीव भी अपने बच्चों को वो अभ्यास कैसा करना है, किचन में कैसा वो रोटी कैसी बनानी सिखाएगी कि नहीं सिखाएगी, उसकी बात नहीं है, उस उपदेश की बात नहीं, मोक्ष मार्ग संबंधी उपदेश। उपदेश सुनकर या पूर्व में सुनी हुई देशना को, पूर्व में ने हो सकता है 10 साल पहले सुनी हो सकता है पूर्व में सुना हो, अब उसको विचार में लिया। देखो हमें भी ऐसा है ना, बचपन में हमारे पिताजी हमें बार बार कुछ बातें बताते थे, उस समय तो गौर नहीं किया और अब याद आती, हाँ पिताजी ऐसा कहते थे, पिताजी ऐसे कहते, संभाल कर बराबर खर्चा करना या हिसाब लिखना, जो कुछ अन्य भी बातें लौकिक की भी बातें हमें, अरे मेरे पिताजी ऐसा कहते थे, तब तो गौर नहीं किया, तब तो उसको पर ध्यान नहीं दिया। अब उस बात को याद करके उस रूप अभी हम बिहेव करते हैं, तो हम कहेंगे पिताजी के उपदेश के अनुसार हमने कार्य किया। ऐसे ये देशना हो सकते है कुछ साल पहले मिली हो, या हो सकता है पूर्व भव में भी मिली हो। तो उस देशना को यानी जिनेन्द्र कथित तत्वों को विचार में लेता है, तो विचार और तत्व निर्णय करने लगता है। बार बार यही बात आने वाली है, तत्व विचार और तत्व का निर्णय, तब ये चारों ही लब्धि एक साथ होती है। क्या कहा? देशना सुनी है पूर्व भव में, अब जिस समय अभी वो तत्व संबंधी विचार करने लगता है क्योंकि उसने ऑलरेडी सुने हैं, तब उस काल में चारों एक साथ प्रकट होती है। कौन सी? शोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, अभी हमने उसके डिटेल नहीं देखे है, यहाँ तो जस्ट जनरल स्टेटमेंट चल रहा है। तो चारों ही एक साथ होती है। अब तत्व विचार करते करते आत्मा के सन्मुख उपयोग लगाकर आत्मा में एकाग्र होता है, तो उसको करण लब्धि भी होती है और फिर सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। इसीलिए देशना तो पूर्व भव की भी हो सकती है। अब इस संबंधी जो चर्चा है ना, तो देशना लब्धि के प्रकरण में करेंगे। तुम कहोगे बस तत्व जिज्ञासा हुई, देखो प्रश्न देखना है, तत्व सुने, याद किए और हो गई आत्मानुभूति, कुछ करना धरना नहीं रहा, यानी हमने समझ क्या रखा है, अरे कुछ करेंगे तो होगे ना, खाली ऐसे बातों ही बातों में हो जाएगा, तो द्रव्यानियोग जानकर ही काम हो जाएगा, करनानियोग नहीं जाने तो भी हो जाएगा ना, ये प्रश्न सब है नहीं, इतने जानने की क्या जरूरत है, इतने डिटेल जानने की क्या जरूरत है, कर्मों की अवस्था नहीं जानेंगे तो भी होगा कि नहीं होगा, चरणानियोग की अभी जरूरत ही नहीं है क्यों आचरण की भी जरूरत है, जैसे चाहे जैसा आचरण करो, बस हमने तत्व सुने, याद किए और हो गई आत्मानुभूति। देखो यानी इस प्रश्न में उस जीव की जो अभिप्राय की जो गलती है, भूल है, वो ख्याल में आती है। वो कैसे, वो देखते हम। देखो जीव ने आज तक कुछ क्रिया करके ही धर्म होगा माना था। हम भी बचपन में क्या कर रहे थे, हमने यात्रा की, कुछ धर्म हुआ है ना, तो हमने पर्युषण पर्व में, दशलक्षण में, हम 10 दिन मंदिर में गए, वहां व्याख्यान सुने, वहां व्रत उपवास किए, हमने धर्म किया, ऐसे ही माना था हमने, तो कुछ क्रिया करने से धर्म होता है ऐसा माना था। अब क्रिया से कुछ नहीं होगा सुनकर क्रिया छोड़ना चाहता है, क्या हुआ? हमने सुन लिया प्रवचन में, क्या ये व्रत उपवास से तो धर्म नहीं होगा, तो क्या कर, अरे अच्छा हुआ अभी व्रत करने की भी जरूरत नहीं है, तो हमने सुन लिया पोथी में धर्म नहीं, पहाड़ पर धर्म नहीं, तो हमने वो समय शिखर भी जाना है, ये हमारे विचार था, हमने छोड़ दिया। चलो अच्छा किया आपने, पहले योग्य समय पर उपदेश दिया, हम जाने ही वाले थे, पहले क्रिया से धर्म होता है माना था, क्रिया करता था, अब क्रिया से नहीं होगा माना जाना, तो क्या गया, क्रिया छोड़ना चाहता है, परंतु ये मेरी क्रिया नहीं, ऐसा कभी उसने धारण नहीं किया है। उसमें भी इसके पर की कर्तृत्व बुद्धि तो कायम ही रही। क्या कहना चाहते हैं? देखो हमने तो अभी तक क्या माना था, ये रोटी देखो मैं कितना अच्छा बना दी। तो स्वाध्याय में सुना कि जो बाई रोटी बना ही नहीं सकती, और आटे का परिणाम स्वयं उसके अपने से होता है, कोई मनुष्य उसको बना नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जीव द्रव्य भिन्न है और ये भिन्न द्रव्य है, तो रोटी का कार्य वो बाई का कार्य नहीं है। तो हमने क्या कहा, देखो अभी कल से हम नहीं बनाएंगे, यानी मान्यता क्या है, मैं बना सकती हूँ, आज तक बनाई है, इतना हमने कार्य किया, रोज एक एक घंटा इतनी मेहनत की, और आप कहते हैं रोटी बना नहीं सकते, देखो हम कल से नहीं बनाएंगे। देखो फिर क्या होता है, आप कैसे आपका पेट भरेगा, यानी हम बना सकते हैं, हम नहीं बनाएंगे, मान्यता क्या रही, हम बना सकते हैं पर अब नहीं बनाएंगे। परंतु होते हुए को ये मेरा कार्य नहीं, ऐसा नहीं जाना। रोटी बेलते बेलते अगर विचार आता है, अरे ये तो रोटी का परिणाम देखो रोटी में हो रहा है, उसके अपने में हो रहा है, हाथ का परिणाम हाथ में हो रहा है, जीव का मेरा परिणाम मेरे में हो रहा है, ऐसा विचार नहीं करता। क्या कहता है, देखो मैं नहीं बना सकती ना, अब नहीं बनाऊंगी। यानी उसकी मान्यता कायम रखी, पहले क्रिया करते हुए मान्यता चालू थी, अब क्रिया छोड़कर वही मान्यता चालू है, यानी उसमें कुछ परिवर्तन मान्यता में नहीं हुआ। उसमें भी इसकी पर की कर्तृत्व बुद्धि तो कायम, पर की कर्तृत्व बुद्धि का अर्थ क्या है, पर का कार्य मैं कर सकता हूं ऐसी मान्यता, उसको कहते हैं पर की कर्तृत्व बुद्धि। क्योंकि मैं कर सकता हूं परंतु अब नहीं करूंगा मानता है। सम्यक दर्शन रूपी कार्य का कारण, हमें सम्यक दर्शन रूपी हमारा कार्य करना है, उसका कारण क्या माना इसने, बाह्य में देव गुरु शास्त्र विशिष्ट आचरण, यानी पर्टिकुलर आचरण करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा, शारीरिक क्रिया यानी कोई जो व्रता दी है उसको करके हमको सम्यक दर्शन हुआ, ऐसे मानकर अपनी कारण विपरीतता कायम रखी है। देखो ये जो मिथ्या ज्ञान है ना, खोटा ज्ञान, उसके लक्षण बताए कैसे कैसे, कारण विपरीत यानी कारण संबंधी विपरीत ज्ञान। कारण संबंधी विपरीत ज्ञान का अर्थ क्या है, निमित्त से कार्य होता है ऐसा जो वो जान रहा है मान रहा है, उसको क्या कहा यहाँ, कारण विपरीतता। किसी भी कार्य का कारण उसी द्रव्य में होता है, और इसने क्या माना, कोई अन्य द्रव्य इसका कार्य करेगा, कोई गुरु आकर इसको समझाएगा तो ही इसका ज्ञान बढ़ेगा, कोई भगवान होगा उसके सामने जाएंगे तो ही सम्यक दर्शन होगा। निमित्त रूप से होता है परंतु निमित्त मेरा कुछ कर देगा, ऐसी मान्यता है। देखो अपने में नहीं पर अन्य मति में तो ऐसा है, हमने तो गुरु कर लिया, वो कहते भी है, हमारे भी कोई फ्रेंड्स वगैरह है तो कहते या हमने तो अभी गुरु कर लिया, अब हमारा सारा भार उस पर, कुछ करना है यात्रा में जाना है बच्चों को कुछ है, हमने गुरु को पूछ लिया, ये गुरु कहेगा वो सब हमें मान्य है, वो हमें अभी संसार के पार लगा देगा। ये सारी ऐसी विपरीत भ्रमणा चलती है। यहाँ हमारा विषय कर्णान योग द्वारा पांच लब्धि समझने का है, तथापि देखो कर्णान योग द्वारा हम विषय समझ रहे, तथापि क्योंकि प्रश्न क्या था, चरणान योग का अभी कार्य नहीं है और कर्णान योग को भी अभी जरूरत नहीं समझने की, तथापि जो जीव सम्यक तो प्राप्त करता है उसके आचरण में चरणान योग के कथन अनुसार सहज ही परिणामों की विशुद्धि होती है, यानी उसके इतने मंद कषाय रूप परिणाम होते हैं, ऐसे स्वच्छंद आचरण उसका नहीं रहता, जैसे अभक्ष भक्षण करना, जिस हिंसा दी तीव्र परिणाम होना, ऐसे उसके परिणामों में तीव्र कषाय रूप आचरण भी नहीं रहता, उसका लौकिक जीवन भी सदाचार और नैतिकता से युक्त होता है, यानी बाह्य चाहे जैसा स्वच्छंद आचरण करे, अनीति से आचरण करे और हमने नियम को सम्यक दर्शन चाहिए तो यह नहीं हो सकता। वह अष्टमूल गुण का धारक होता है। ये अष्टमूल गुण क्या होते हैं,
पांच उदंबर फल,
हाँ, पांच उदम्बर फल का त्याग और तीन मकार। ये कौन से तीन मकार? मांस, मद्य और मधु। मध्य ने मदिरा। अभी मदिरा में उसके सारे वो ड्रग्स भी सब आजकल की जो कोई नवे प्रोडक्शन है वो सब उसमें समझना। ये मदिरा में अकेला अल्कोहल नहीं, अभी जो रिसेंट सब है ना उसमें ब्राउन शुगर हो, वाइट शुगर होगी, जो कुछ होगी सब ड्रग्स वगैरह जो नशीले पदार्थ है या अन्य भी कोई जो ऐसी चीजें हैं। देखो क्या कहा, अर्थात पांच उदम्बर फल मांस मद्य और मधु का त्यागी होता है। मधु यानी हनी शहद, उसके सप्त व्यसनादिक नहीं होते, यानी वो सप्त व्यसन का त्यागी होता है। कौन से सप्त व्यसन कोई मालूम है उसमें से? एक दो भी
जुआ।
हाँ, जुआ,
शिकार,
परस्त्रीगमन, वेश्यागमन,
शिकार
खेलना बोले, चोरी है, और ये मद्य वगैरह जो व्यसन जिसको कहते हैं इसे। हाँ,
मदिरा, जुगार, परस्त्रीगमन, वेश्यागमन, शिकार, चोरी,
वो हमने सब बता दिए। ये तो ये सप्त व्यसनादिक उसके नहीं होते। स्वच्छंदी जीवन,
उदम्बर फल पांच कौन कौन?
हाँ, आपका प्रश्न है पांच उदम्बर फल कौन कौन से है। वड का फल, ये तो हम कभी खाते नहीं ना, भक्ष नहीं करते, परंतु वो अभक्ष है। पीपल का फल, अंजीर, फिग्स, उम्बर उसी जाति का फल है वो, और कटुम्बर। देखो उसका लक्षण ऐसा समझ सकते कि जिन वृक्षों उसके काटने पर वो तो सफेद दूध जैसा निकलता है, एक बात, और उनके फल ऐसे डाली पर लास्ट में नहीं लगते, वो थर्ड पर लगते डायरेक्ट। कितने फल कैसे आते, पहले फूल दिखता है, फिर वो फूल की जगह फल होता है, जैसे अनार है, कोई अन्य भी जो है, अभी आम भी लगता है, तो पहले वो मोहर जिसको कहते हो, तो छोटे छोटे फूल होते हैं, फिर बाद में वो प्रक्रिया होकर उसके आम लगते हैं वहां। और ये फल कैसे, जैसे फनस आपने देखा था क्या, जैक फ्रूट क्या कहते हैं उसको, हाँ, वो कहाँ लगता है? थर्ड पर लगता है। और बॉटनिकली भी उसमें कुछ ये अंतर पुष्पी वगैरह कहते हैं, उसकी अलग जाति से वो फल होता है, तो उसमें जीवों की पैदाइश होती है, बहुत त्रस जीव होते हैं उसमें, इसलिए इन फलों का त्याग होता है, त्याग करना चाहिए। ट्रंक पे या बड़े बड़े डालियों पर लगते हैं ये अंजीर उम्बर भी, आपने देखे होंगे कैसे उसके वृक्ष देखे होंगे तो पता चलेगा आपको। द्रव्यान योग के अनुसार वह तत्व विचार करता है। देखो सम्यक तो होने वाला जीव क्या कर रहा है, चारण योग की बात आई थी ना, अभी हमने चरणान योग के अनुसार वो सदाचारी होता है, द्रव्यान योग के अनुसार तत्व विचार करता है, प्रथमान योग पढ़कर वह संसार से भयभीत होता है, क्योंकि पुण्य पाप के फल कैसे हो कैसे होते हैं, कैसे कैसे जीवों को कैसी कैसी कंडीशन होती है, चक्रवर्ती जैसे संपत्ति को छोड़कर भी जीव मुनि दीक्षा लेकर कैसा पुरुषार्थ करता है, ये सारी बातें वो प्रथमान योग से पढ़ता है। तीर्थंकर आदि पुरुषों के चरित्र पढ़कर अपना पुरुषार्थ बढ़ाता है। देखो हम बाहर में देखते हैं कोई जो बहुत श्रीमंत होते हैं या अंबानी जैसे होते हैं, उनके देखते कर हमें भी थोड़ा आता है ना अंदर से, अरे हम भी इतना पैसा कमाएंगे। या जो क्रिकेट प्रेमी है वो क्या करते हैं, वो बच्चे टीवी देखते हैं और देखते वो बैट लेकर चलता है उनका सारा दिन भर, टीवी फोड़ते हैं। अच्छा घर में देखते हैं हमारे बच्चे पोते क्या करते हैं, वो जैसे वहां शॉट लगाते हैं वो स्वयं भी वैसे प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको भी अंदर से उत्साह आता है। तो हम भी प्रथमान योग पढ़कर, तीर्थंकरों के आदि चरित्र पढ़कर हमें भी अंदर से प्रेरणा मिलती है, चलो हम भी ऐसा पुरुषार्थ करें। कर्णानुयोग के कथन अनुसार कर्मों की अवस्थाएं सहज स्वयमेव होती है। क्या कहा, कर्णानुयोग पढ़कर उसके अनुसार कोई पुरुषार्थ नहीं होता, पुरुषार्थ करना यानी तत्व विचार करना। तो कर्णानुयोग पढ़कर क्या होता है, कर्म की अवस्थाएं जो स्वयं स्वयमेव होती है उसका ज्ञान हो जाता है। जीव तो तत्व विचार में इतना लीन हो जाता है कि अंतर्मुहूर्त में सम्यक्त्व सहज प्राप्त होता है। ये सहज शब्द बारंबार आएगा, जैसे हमने कहा जो पर्याय होनी है पांच समवाय सहज वहां होते ही है, तो जो तत्व विचार करता है तत्व विचार में ही वो लीन है, वो बस उसी में मग्न है, तो उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। अब इसकी हम पात्रता की भी बात देखिए, अब आगे बढ़ेंगे। अभी हम अब यहां से एक एक लब्धि का हम विचार करेंगे। देखो ये अभी क्षोपशम लब्धि की संबंध में छठे नंबर का जो पत्र है उसमें हम बात करेंगे इसकी। देखो अभी यहां सबसे पहली जो क्षोपशम लब्धि है उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। ये सेकंड पैराग्राफ है उसके, वहां से हम पढ़ेंगे। क्षोपशम शब्द से अब तुम परिचित हो। क्या है क्षोपशम का अर्थ, हम फिर दोबारा जरा देखते हैं परिभाषा, निकालना उसकी परिभाषा। हिंदी में 50 पृष्ठ था शायद, गुजराती में 3 पृष्ठ कम करना। क्षोपशम की परिभाषा देख लेते हैं।
मिला
क्या
वर्तमान
47। देखो अब ये स्पर्धक क्या होते हमने देखे थे, अनुभाव को बताने वाले उसको स्पर्धक कहते हैं। अब यहाँ क्षोपशम यानी यहाँ ज्ञान की बात चलेगी। क्षोपशम लब्धि में तो अन्य भी कर्मों की बात है, परंतु यहाँ ज्ञानावरण का भी जो क्षोपशम चलता है उसकी भी बात चलेगी। तो यहाँ कहते हैं वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। अब पहले ये निश्चित करते हैं क्षयोपशम कौन से कर्मों में होता है, कौन सी प्रकृतियों में होता है। क्या कहा, क्षयोपशम कौन से प्रकृतियों में होता है। तो यहाँ सर्वघाती देशघाती की बात चल रही है ना। एक और सिंपल प्रश्न है, साता वेदनीय कर्म सर्वघाती है कि देशघाती है। भाई साता वेदनीय कर्म सर्वघाती है कि देशघाती है, देशघाती है। आप क्या कहते हैं मनीष भाई,
घाती घाती कर्म है।
बोलो नहीं मालूम,
नक्की नहीं कर सकते।
हाँ नली ने बेन बोलो,
तो
वेदनीय कर्म, वो कहते वेदनीय कर्म अघाती है ना, वो देशघाती है ना सर्वघाती है। क्योंकि देशघाती और सर्वघाती किसके भेद है, घाती कर्मों के, है ना। आपने भी बताया था ना, ये तो मैंने आपको ट्रिक क्वेश्चन पूछा। तो ये सर्वघाती देशघाती का जहां चल रहा वही क्षोपशम होगा। तो वेदनीय कर्मों में कोई क्षोपशम नहीं होगा, आयु में कोई क्षोपशम नहीं होगा, नाम कर्म में कोई क्षोपशम नहीं होगा, और ना ही गोत्र में क्षोपशम होगा। क्षोपशम होगा तो कहाँ हो सकता है, चार घाती कर्मों में हो सकता है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर क्षोपशम की परिभाषा देखते हैं। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उसका उदय नहीं होना, सर्वघाती रूप से उदय नहीं होना, उसको क्या कहेंगे, क्षय। उदय का अभाव ही यहाँ क्षय कहलाता है। ये सत्ता में से नाश होने वाला जो हमने कहा ना क्षायिक समय, तो उसकी बात नहीं है यहाँ इस परिभाषा में। क्षय का क्या अर्थ है, उदय नहीं होना, उसी को यहाँ क्षय कहा है। भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धक, वही स्पर्धक है ना सर्वघाती स्पर्धक, भविष्यकाल में पड़े रहेंगे, उदय में नहीं आएंगे, उसको क्या कहेंगे, सदवस्था रूप उपशम। पर उदय तो होगा ना किसी का, तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदय, सॉरी वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, इसको क्या कहेंगे, क्षयोपशम। ये तो हमने परिभाषा पहले देख भी ली थी, अब यहाँ फिर उसकी भी बात आएगी। अपने प्रकरण में आते हैं अभी हम। देखो ज्ञान के उघाड़ को क्षयोपशम या क्षयोपशम ज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा जब हम मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पर लगाते हैं तो उसका जितना ज्ञान का उघाड़ है, जितना ज्ञान अभी प्रकट है, उसको क्या कह रहे हैं, क्षोपशम ज्ञान। क्षोपशम कर्म की अवस्था का भी नाम है, जिसकी तो चर्चा हमने की है। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्मों का क्षोपशम अनादि काल से सभी जीवों में पाया जाता है, इसका अर्थ देखते हैं। अनादि काल से जीव को कोई ज्ञान प्रकट है कि नहीं है पर्याय में अनादि से? कौन सा है? मोती शुद्ध ज्ञान तो सब जीवों को है ही, कभी देव में गया, नरक में गया, विभंग गया, ने अवधि ज्ञान भी उसका हुआ था, यानी उसकी ज्ञान की पर्याय कौन सी? क्षोभसम ज्ञान की पर्याय अनादि से चल रही है। अब जो वीर्यांतराय आदि जो है ना, उसका भी क्षोभसम होता है, जैसे ज्ञानावरण का क्षोभसम है वैसे वीर्यांतराय जो है उसका भी क्षोभसम अनादि से चला आ रहा है। दर्शन भी उसको है कि नहीं है? चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन भी अनादि से है, अचक्षु दर्शन तो है ही है, चक्षु दर्शन जब जब वो चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याय में आया उसको चक्षु दर्शन भी था, यानी ये भी अनादि से है। तो ये क्या है? क्षोभसम कब से है? अनादि से। क्या मोहनीय में कभी क्षोभसम हुआ था अनादि से? मोहनीय में क्षोभसम हो जाए तो क्षोभसम सम्यक तो हो जाएगा, क्षोभसम सम्यक तो वो अभी नहीं हुआ है, यह अनादि मिथ्या दृष्टि जीव लिया है ना, तो इसलिए तीन कर्म लिए। कौन से? ज्ञानावरण में भी क्षोभसम चल रहा है, दर्शनावरण में भी है और अंतराय में भी है। मिथ्यात्व नामक पहले गुणस्थान से क्षीण कषाय नामक बारहवें गुणस्थान तक और एकेंद्रिय से संकी पंचेंद्रिय जीवन तक सब में इन कर्मों का क्षोभसम पाया जाता है। अभी जो मिथ्या दृष्टि है उसको जो मति शुद्ध ज्ञान है वो भी क्षोभसम ज्ञान है। अब जिसको सम्यक दर्शन हुआ उसी जीव को, उसको मति शुद्ध ज्ञान रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। वो कौन सा ज्ञान कहलाएगा? क्षोभसम ज्ञान होगा कि क्षायिक ज्ञान होगा? क्षोभसम ज्ञान, क्योंकि क्षायिक ज्ञान तो केवल ज्ञान को कहते हैं। तो उस जीव को भी क्षोभसम चल रहा है, कब तक? बारहवें गुणस्थान तक। हमने देखा ना बारहवें गुणस्थान तक क्या कहते हैं उस जीव को? छद्मस्थ। छद्म का अर्थ हमने देखा था आवरण, ज्ञानावरण और दर्शनावरण है तब तक उसको छद्मस्थ कहेंगे, और जब केवल ज्ञान होता है तो इनका नाश हो जाता है तब उनको सर्वज्ञ कहेंगे। तो देखो नीचे के पैराग्राफ देखते हैं अभी हम। हमारी बात क्षोभसम की नहीं है अपितु क्षोभसम लब्धि की है। क्या कहा? यहाँ कर्मों का क्षोभसम होता है या क्षोभसम ज्ञान होता है उसकी बात यहाँ नहीं चलेगी। सम्यक तो होने के पहले जो क्षोभसम लब्धि नाम आता है लब्धि का, वो कुछ अलग बात है। अकेले संगी पंचेंद्रिय हो जाना ये क्षोभसम लब्धि नहीं है। तो क्षोभसम लब्धि का अर्थ एग्जैक्ट क्या है वो अभी हम देखने जा रहे हैं। देखो क्षोभसम लब्धि मात्र संगी पंचेंद्रिय जीवों में ही पाई जाती है। क्यों? हमने आवश्यक कंडीशन देखी थी, संगी पंचेंद्रिय जीवों को ही क्षोभसम सम्यक तो होता है। तो संगी जीवों में तो क्षोभसम लब्धि होगी, परंतु सभी संगी पंचेंद्रिय जीवों को क्षोभसम लब्धि है ऐसा नहीं कहेंगे। क्या कहा? क्षोभसम लब्धि किसके होगी? संगी पंचेंद्रिय। क्या संगी पंचेंद्रिय हुआ इसलिए उसको क्षोभसम लब्धि है? तो नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि हमने अभी उसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, जब पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा क्यों नहीं है। अर्थात ज्ञान का इतना उघाड़ होना क्षोभसम लब्धि नहीं कहलाती। तो किसे कहना क्षोभसम लब्धि, उसकी परिभाषा अभी हम देख रहे हैं। देखो क्षोभसम लब्धि ज्ञानावरणादि समस्त, समस्त यानी सभी। ज्ञानावरणादि का अर्थ क्या है? आदि में अभी सभी लेना, उसके आगे क्या लिखा है? अप्रशस्त कर्म प्रकृतियां। अभी हम थोड़ा गिनेंगे ज्ञानावरणादि अप्रशस्त कर्म कौन कौन से है। फॉर एग्जाम्पल ज्ञानावरण तो उन्होंने बता दिया, और कौन से है अप्रशस्त? दर्शनावरण और मोनीय और अंतराय, सभी घाती कर्म अप्रशस्त है ही है। और भी कोई अप्रशस्त कर्म है? अघाती में भी है, असाता वेदनी है, वो आयु, अभी आयु को छोड़ दो बाकी बाजू में, और भी क्या है, नाम कर्म की भी अशुभ होती है और गोत्र कर्म भी होती है। ये ज्ञाना वर्णादि समस्त अप्रशस्त प्रकृतियां, ख्याल में आया? उनमें क्या होता है उसको देखेंगे। प्रकृतियों की शक्ति अर्थात अनुभाग जिस काल में समय समय प्रति, समय समय प्रति का अर्थ है एवरी समय, समय कितना सूक्ष्म है मैंने देखा था, एक आवली में असंख्यात समय होते हैं, तो प्रत्येक समय में क्या हो रहा है, प्रति समय अनंत गुणा घटता, अनंत गुणा घटता का अर्थ क्या होता है, अनंतवा भाग रह जाना, उसको कहेंगे अनंत गुणा घटता। फॉर एग्जाम्पल 16 है हमारे पास, एक संख्या 16 है, हम कहेंगे चार गुणा घट की घट गई, क्या कहा, चार गुणा घट गई, फोर टाइम्स घट गई, घट गई बढ़ गई नहीं कह रहे, घट गई, तो उसका अर्थ क्या है, चार से भाग देना, 16 को चार से भाग देंगे तो चार रह जाएंगे, और 16 को आठ गुणा घट गई कहेंगे तो आठ से भाग देंगे दो रह जाएंगे। अब यहाँ कितना अनंत गुणा घट गया, क्या अनंत से भाग देकर ख्याल है ना, अनंत गुणा घटने का, अनंतवा भाग रह जाना, अनुभाग पहले जितना था दूसरे समय में अनंतवा भाग हो जाता है, तीसरे समय में उससे अनंतवा भाग, चौथे समय में उससे अनंतवा भाग, अरे वाह ऐसा होता है, हाँ होता है, क्यों, शोभसम लब्धि, अभी देशना भी नहीं सुनी है, क्या हुआ, जिज्ञासा कुछ अंदर जग गई, मैं कौन हूं या ऐसे कोई, अभी वो व्यक्त रूप से भी नहीं है, ऐसी कंडीशन होती है, देखो क्या है, ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियां, प्रशस्त में कुछ नहीं हो रहा है, पुण्य प्रकृतियों का आपके कोई हाथ नहीं लगाएगा, हम कहते हैं पुण्य और पाप का नाश होकर मोक्ष हो जाएगा, अरे परंतु जब तक मोक्ष नहीं हुआ ना सब अप्रशस्त अप्रशस्त पहले चलेंगे, पुण्य रहेगा आपके पास, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें लगता है हम स्वाध्याय में जाएंगे हमारे ये संयोग का क्या होगा, इतनी मेहनत की 50 साल के बाद ऐसी हमारी अच्छी कंडीशन बन गई और अभी आप स्वाध्याय की प्रेरणा देते हो, ये क्या होगा, अरे वो पुण्य और बढ़ जाएगा बिना कुछ किए, अभी भी जो किया था ना वो कुछ किए बिना ही हुआ है, हमें मान लेते कि हमने कुछ किया और हमने ये सारी संपत्ति प्राप्त की है, तो सभी तत्व विचार और ये तत्व के उसके जिज्ञासा के काल में क्या क्या होता है वो बात बता रही है, तो ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त प्रकृतियों की जो शक्ति है अनुभाग है जिस काल में समय समय प्रति अनंत गुणा घटता अनुक्रम रूप होकर उदय में आने लगता है, फल किसका मिलता है, उदय का, उदय कैसा हो रहा है, अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटकर उदय में आ रहा है, अभी जितना है आगे के समय में उससे घटता हुआ, उससे आगे के समय उससे घटता हुआ, अब ज्ञानावरण का अनुभाग घट रहा है उसका अर्थ क्या है, आवरण घट रहा है उसका अर्थ क्या है, ज्ञान खुल रहा है, ख्याल है, हमें लगता है हमारी बुद्धि कुछ नहीं काम करती, अरे मत डरना, तत्व की जिज्ञासा होने मात्र से ही ज्ञान खुलने लगता है, अभी आगे चलकर तो और होगा उसमें, तो उस काल में एक शोभसम लब्धि होती है, अप्रशस्त कर्मों की शक्ति हीन हीन होकर उदय में आती रहती है, तो हमें वो संयोग, हमें क्या लगता है, नहीं नहीं अभी तो हमारे प्रतिकूल संयोग चल रहे, थोड़ा संयोग ठीक ठाक करेंगे फिर स्वाध्याय में लगेंगे, अरे यहाँ तो उल्टा बता रहे हैं, ये तत्व की रुचि होने मात्र से ही वो अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग अपने आप घटकर उदय में आएगा, तो आपको संयोगों की चिंता नहीं करनी, संयोगों में हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु हम क्या बहाना क्या बनाते हैं, अभी तो बच्चे बड़े हो गए हैं, लड़की की शादी करनी है, थोड़ा इनका शादी कर लूं, अभी तो बहू आने वाली है घर में, फिर तो मुझे आराम ही आराम है, ऐसा सब माओं को लगता है, क्यों अभी यहाँ तो कुछ बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बच्चे, यहाँ के पेरेंट्स तो बहुत सुखी है, हाँ लकी है, हाँ बच्चे अपनी जिम्मेदारी स्वयं संभाल लेते हैं, इंडिया में क्या होता है, बच्चा शादी करता है बहू आती है, वो भी नई लड़की, अभी वो भी उसका भी टाइम अभी तक तो पढ़ने में गए ना, तो घर की जिम्मेदारी नहीं, फिर उसको अपना घर का तो तरीका सिखाना पड़ता है, फिर बच्चे होते हैं, फिर वो तो अंदर से अपने को मोह उमड़ता ही है ना, और नाम नाम लेते क्या करे, अभी उसके बहू के लिए करते ऐसा लगता है, और फिर अंदर से रहा नहीं जाता, तो पूरा दिन हम वो पोते पोतियों के साथ नातियों के साथ बिताते, फिर उनके जो बड़े हो जाएंगे फिर हम स्वाध्याय करेंगे, तो इसकी लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती।
जय इंसा भाष
फिर आपने नेक्स्ट वाला स्टेप नहीं कहा ना, उनकी पोतों की शादी भी करनी है।
अच्छा, पोतों की शादी भी करनी है।
पीढ़ी का कमाने का,
पहले कमाए तो इतना कमाए तो हम थोड़ा खाएंगे तो सही। क्योंकि इसके तो बहाने तो मिल ही जाते हैं, क्यों? जब अंदर की रुचि होती है वो सब होते हुए सब कुछ होता है, नहीं समझा? हमने पढ़ाई की तो पढ़ाई के बाद हम नौकरी की, चलो अभी अच्छा सेटल हो गए, तो मुझे कोई ऐसा नहीं मिला कि अभी हमारे क्या कमाने के दिन है, अभी आप अभी कुछ मत कहो, हम जाके बुढ़ापे में शादी करेंगे। आपको मिला ऐसा कोई? तो कमाना भी चलता है, बाकी सब कार्य भी चलते हैं, शादी भी करते हैं, बच्चे भी होते हैं, वो तो साइड बाय साइड सब चलता है।
यहाँ पर ये प्रॉब्लम है,
पर यहाँ पर प्रॉब्लम है। हाँ, कौन सी?
यहाँ पर क्या कि बच्चे 35-40 के हो जाते हैं, कभी भी शादी नहीं करते हैं।
तो अभी वो जाने दो। क्योंकि वो भी सही सोचते हैं ना, जैसे हम बूढ़े होने पर भी स्वाध्याय नहीं करना चाहते, वैसे वो भी 40 के होने पर शादी नहीं करना चाहते। वो तो सियाने हैं, मैं तो कहूंगी।
अगर शादी कर ले तो बच्चे भी नहीं लाते।
देखो अभी हम ये अनंत गुना घटता का अर्थ अभी हमने देखा, जो आगे के पैराग्राफ में बताया। देखो उससे एक पैराग्राफ छोड़ के आगे बढ़ते, जीव ने पूर्व में बांधे हुए। देखो जीव तो अनादि से कर्म बंध करता आया है, अब कहीं भी पूर्व में उसने बांधे थे तो वो कर्म का क्या होगा? सत्ता में पड़े रहेंगे। सत्ता में पड़े हुए जो अप्रशस्त कर्म है उनका अनुभाग घटता जाता है, ये सहज होता है। हाँ, पहले बांधे थे और सत्ता में पड़ा है अभी को, तो सत्ता में पड़े पड़े उसका क्या होता है? अनुभाग यानी फल लेने की शक्ति किसकी? पाप कर्मों की। पुण्य कर्मों में कुछ नहीं परिवर्तन होगा, उल्टा पुण्य कर्म बढ़ेगा अभी उसका अनुभाग, वो भी बात आएगी। पाप कर्मों का अनुभाग घटता चला जाता है और हर समय जो नया नया अनुभाग का उदय होगा ना, वो और घटते घटते उदय में आएगा। अनुभाग घटता जाता है और प्रति समय यानी एवरी समय पूर्व अनुभाग से अनंतवा भाग रूप रह जाता है। उदय में आते समय भी अनंतवा भाग होकर उदय में आता रहता है। तो ये हमारे फेवरेबल है कि नहीं है? हमने क्या देखा था? जो जीव सम्यक तो प्राप्त करता है, मैं मोक्ष जाना चाहता है, उसके तो सभी कंडीशंस फेवरेबल है, कर्मों तक की सभी फेवरेबल हो जाती है।
तो ये वो कर्मों में हम फेरफार कर जो बाद में होता है, ये चैप्टर इसमें लगता है,
इसमें से यहाँ से शुरू हो जाता है। अच्छा। कर्मों में सारा वेरिएशन यहाँ से शुरू हो गया है। अभी तो देखना सुनना बाकी है, प्रायोगिक लब्धि सब बाकी है, यही से ये बात शुरू होती है और यहाँ से लेकर वो आगे सब चलेगा उसका। यहाँ से लेकर आगे जब वो सम्यक तो भी प्राप्त करेगा, बाद में भी ये अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग हर समय घटता ही चला जाएगा।
तो वो संख्या में घट जाएगा, तीव्रता में?
तीव्रता में, तीव्रता में। परमाणु जितने हैं उतने रहेंगे, उसका जो पाप का जो फल मिलना है वो ओछा होता चला जाएगा। यानी देखो मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग तीव्र था, अभी क्या होगा? मिथ्यात्व का भी अनुभाग मंद है तो सर्वघाती, कितना भी मंद होगा तो भी सर्वघात करेगा, फिर भी अनुभाग कैसा हो रहा है? अभी मंद मंद मंद। चारित्र मोहनीय का अनुभाग कैसा हो रहा है? मंद मंद मंद। क्या किया उसने? अभी कुछ नहीं किया है। अभी तो उसको तत्व की कुछ अंदर से ऐसी उसको इच्छा हुई है कि ये सुनू वगैरह कुछ नहीं, भी जिज्ञासा उसकी जागृत हो गई, बस इतना ही है। यहाँ केवल अप्रशस्त कर्मों की ही बात की है, प्रशस्त कर्मों की नहीं। ये अप्रशस्त कर्म कौन से हमने लिस्ट देखी थी पहले? घाती कर्म तो सभी अप्रशस्त है और अघाती में भी हमने दो भेद किए थे और उसकी लंबी लिस्ट भी देखी थी और उसके वो स्पर्धक की भी हमने बात की थी। देखो यहाँ लिखते, घाती कर्मों में ज्ञानावरणादि प्रकृतियों के अपने अपने अनंत स्पर्धक है, उनमें मंद अनुभाग से तीव्र अनुभाग तक के स्पर्धक के चार चार स्थान हमने देखे थे। घाती कर्म में कौन से देखे थे? मंदता की ओर से लता, दारू, अस्थि और क्षय। अघाती कर्मों के पुण्य प्रकृति में गुड़, खान, शर्करा और अमृत, और अप्रशस्त में नीम, कांजीर, विष और हलाहल। अब जो हलाहल वाले हैं उनका अनुभाग कम होगा, और यहाँ पर जो शैल वाले हैं उनका अनुभाग कम होता चला जाएगा। शैल में भी मंद मंद की ओर चले जाएंगे, इस तरह से उसका अनुभाग घटता चला जाएगा। अब हम दो पैराग्राफ के बाद देखते हैं। अब क्षोभषम और क्षोभषम लब्धि, इन दोनों में जो अंतर है वह तुम्हारे ख्याल में आ जाएगा। क्षोभषम तो केवल देशघाती प्रकृति में ही पाया जाता है। क्या कहा हमने, देखे थे ना, देशघाती प्रकृति, उसमें स्पर्धक कौन कौन से होते हैं? सर्वघाती भी होते हैं, देशघाती भी होते हैं। तो सर्वघाती सत्ता में पड़े रहते, उदय में नहीं आते, उदय में आते आते देशघाती हो जाते हैं, तो उसको हम क्षोभषम कहते हैं। तो क्षोभषम किसमें होगा? देशघाती प्रकृतियों में। और क्षोभषम लब्धि में अनुभाग किसका घटेगा? सभी कर्मों का, देशघाती हो या सर्वघाती हो, सभी अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग प्रति समय घटता चला जाएगा। मिथ्यात्व का भी अनुभाग घटेगा, चारित्र मोहनी का भी अनुभाग घटेगा। हम कहते हैं ना, पहले राग द्वेष तो कम करो, तो कम करो की बात ही नहीं, वो हो जाएगी सहज रूप से। इस तरह से मंद कषाय रूप परिणाम होते चले जाते हैं। तो क्षोभषम तो केवल देशघाती प्रकृति में ही पाया जाता है, और क्षोभषम लब्धि में अनुभाग प्रति समय अनंत गुना घटता है, और यह कार्य सभी घाती कर्मों में और अघाती कर्मों के अप्रशस्त प्रकृतियों में होता रहता है। यानी सभी पाप प्रकृतियां लेनी, घाती अघाती सब। अब ये जो उनका डिफरेंस है ना दोनों में, उसको हम शाम को ले लेंगे, क्योंकि और भी उसमें बहुत सारे अंतर है दोनों में। तो क्षोभषम क्या है और क्षोभषम लब्धि क्या है? क्षोभषम तो हमने देखा था विस्तार से, तो इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, ये हम शाम को और फिर विस्तार से देखेंगे। अभी यहीं रुकते हैं। बोलो 2400 भगवान की जय।